Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हैबिट शब्द जो है उसमें अगर हम एच को निकाल दें तो भी बिट रह जाता है। उसी तरह से अगर हम ए को निकाल दें तो भी बिट रह जाता है, और अगर हम बी को बिट निकाल दें तो भी इट रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में हमारे जो जटिल संस्कार हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो जाते जाते उनमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम एफर्ट्स देंगे तो कोई भी हैबिट से आप बाहर निकल सकते हैं। और हैबिट के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीके मोहन सिंगल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
धन्यवाद
भाई जी। हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करें, कुछ हैबिट्स गुड होते हैं और कुछ हैबिट्स बैड होते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप हमें ये बता सके, अगर उसका जड़ कारण बता सके, तो शायद हम उससे कोप अप कर सकते हैं।
देखिए, आदत बनती है कोई भी कार्य को रिपीटेडली अगर किया जाए, बार बार अगेन एंड अगेन, तो वो धीरे 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 आदत बन जाती है
जी।
और शुरू में अगर वो ऐसा लगता है कि ये मेरी आदत नहीं बन सकती, मेरा इसके ऊपर कंट्रोल है
जी।
लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस आदत के वशीभूत हो जाते हैं, और उसे फिर हम छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ पाते।
करेक्ट।
तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तब जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं वो धीरे 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 हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने लगती हैं, और हम उनसे छूटना चाहते हुए भी नहीं छूट पाते। तो ये संस्कार बिल्डअप होने की बात है, अगेन एंड अगेन बचपन से ही जो संस्कार हमारे बिल्डअप होने लगते हैं
जी।
तो इसके लिए आवश्यक ये है कि सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन, अगर हम कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो पहली बात डिटर्मिनेशन है कि कोई भी परिस्थिति में हम मुझे ये नहीं करना है या ये करना है। तो ये डिटर्मिनेशन एक तो बहुत आवश्यक है, और जब ये डिटर्मिनेशन आ जाता है तो वो आदत छूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जस्ट शुरू होती है। क्योंकि अक्सर करके कई बार देखा गया है, डिटर्मिनेशन तो लोगों में हो जाता है, छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक दिन, दो दिन, चार दिन छोड़ा, कोई भी पुरानी बात को छोड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आने लगती है कहीं पर। तो डिटर्मिनेशन के साथ साथ परसिस्टेंस, यानी उस बात को मेंटेन रखने के लिए ये आवश्यक है कि ये बात को हमें कितने दिन तक करना है। और साइकोलॉजिस्ट ने ये बात बताई है कि अगर हमें कोई नई आदत बनानी है, पुरानी छोड़नी है, तो 3 वीक्स का समय बहुत आवश्यक है, 3 सप्ताह का।
अच्छा।
हाँ, मान लीजिए कोई स्मोकर है, तो अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, या कोई मानो शराब पीता है, शराब छोड़ना चाहता है, तो पहले 1-2 दिन जब छोड़ेगा तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो उसमें उसका डिटर्मिनेशन ढीला होने लगता है
जी।
लेकिन अगर वो ये डिटर्मिन्ड है कि मुझे 3 सप्ताह तक तो ये करना ही करना है, तो विड्रॉल सिम्टम भी अगर होते हैं तो उसके एंटीडोट ले करके, कोई दवाइयाँ ले करके, वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या हैबिट वगैरह या कोई भी आदत है उस पर छोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता रह सकता है
जी।
तो हमारा तो ये अनुभव है, यहाँ मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें इस इंस्टीट्यूशन में बहुत साल से हूँ, तो यहाँ जब लोग आते हैं तो इससे इतना प्रभावित होके जाते हैं कि जब वो आदत को छोड़ते हैं तो वो बताते हैं, भाई पहले मैंने कई बार इस आदत को छोड़ा लेकिन फिर मेरे अंदर आ गई, लेकिन जब से मैंने ये सुना कि ये 3 सप्ताह तक मुझे करना है, तो वो 3 सप्ताह तक इफ़ एनी हाउ वी आर एबल टू मेंटेन दैट न्यू हैबिट, बस फिर वो जिंदगी भर के लिए बदल जाती है, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बॉडी से ज़्यादा जरूरी है माइंड को एक्सेप्ट करना। माइंड में हम समझते हैं अभी मेरा सिर दर्द हो रहा, इट इज़ ड्यू टू दिस वन, कि मैंने ये छोड़ दिया, या माइंड, तो पहले माइंड को और बॉडी के लिए जैसे ये आवश्यक है, ऐसी माइंड के लिए ना ये जरूरी है कि हम अपनी विल पावर को थोड़ा और स्ट्रांग करते जाएं। और उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा जब मेडिटेशन की प्रक्रिया,
अच्छा,
और उसमें जब पहले यही सिखाया जाता है, फर्स्ट लेसन ही, कि आप मतलब कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, और आत्मा जो है शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो उन चीज़ों में जब हम स्थित होने लगते हैं ना, तो जब ये होता है मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इसको रेजिस्ट कर सकते हूँ इस बात को, तो धीरे धीरे अंदर जो शक्ति डेवलप होने लगती है। तो मेंटली जब आदमी पावरफुल होता है तो फिजिकली भी ना उसके अंदर, हाँ, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है कि वो हार्मोन्स उस चीज के लिए मददगार बन जाते हैं जिस आदत को वो छोड़ना चाहता है
जी।
तो ये फिजिकली से पहले मेंटली होना भी ये बहुत आवश्यक है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों होते हैं, और 3 सप्ताह तक जब ये हो जाता है जीवन भर के लिए वो आदतें बदल सकती हैं
जी।
तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को भी, और उसके लिए हम उसे सहयोग दें, कभी थोड़ा वो कमज़ोर भी पड़े तो उसे बाहर से सहयोग की आवश्यकता है कि भाई देखो ये हो सकता है, इतने लोगों ने छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं छोड़ सकते।
करेक्ट।
और ये विड्रॉल सिम्टम अगर आ रहा है, ये 2-3 दिन तक आएगा, उसके लिए देखो तुम ये दवाई ले लो। मुझे याद है जिसने कि बहुत पुरानी स्मोकिंग की आदत थी
जी।
स्मोकिंग नहीं, ड्रग की, ड्रग ले रहे थे कंटिन्यूसली, और ड्रग जब छोड़ा उन्होंने 1-2 दिन तो बहुत बॉडी के अंदर ये फील होने लगा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से ना उन लोगों को इस प्रकार की होम्योपैथिक दवाई वगैरह है, और साथ में डिब्बी में इलायची और मिश्री और ऐसी चीज़ें, तो उससे क्या है कि जहाँ एक तरफ उन्होंने मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग किया, दूसरी तरफ इन चीज़ों का सहयोग लिया
जी।
तो इन चीज़ों के सहयोग से वो छोड़ सके, और आज ऐसे बहुत हैं, सैकड़ों में हैं जिन्होंने, जो ड्रग एडिक्ट थे उन्होंने ड्रग्स छोड़ दी और आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं
जी। भाई जी, ये तो बहुत बड़े एडिक्शन की बात हो रही है, लेकिन अभी अगर छोटे छोटे एडिक्शंस की बात करें कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, और कुछ लोगों को पास्ट की बातें ही वो सोचते रहते हैं, उनका साइकिल ही वैसा चलता रहता है, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे?
ये आपने बहुत ठीक बताया कि कई बार हम पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, लेकिन ये पुरानी बातें, इनके आधार पर ही वास्तव में ना भविष्य बनता है
जी।
तो एक मुझे याद आ रही है कबीरदास जी की बात की, बड़ा अच्छा कहा है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। पुराने जमाने में ना घर घंटी होती थी घर में, चक्की जैसे ना, अनाज पीसने की, एक पाटा नीचे होता था, एक ऊपर चलाते
जी,
थे
जी।
उसमें अनाज पीस के बाहर आता था। तो जीवन में भी ये 2 पार्ट जो हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। या तो हमें भूतकाल का चिंतन चलता रहेगा जैसा आपने बताया
जी।
या भविष्य की चिंता होगी, अरे बच्ची की शादी करनी है, पैसा कहाँ से लाएंगे, मकान बनाना है, लड़के को पढ़ाना है, तो भविष्य की चिंता, इन दोनों में मनुष्य पिस जाता है। तो चक्की में एक विशेषता होती है, अनाज पिस के निकलता है, लेकिन बीच में जो अनाज होता है वो साबुत रह जाता है, काफ़ी है, वो पिसता नहीं है। तो इसलिए जो ये कहा गया कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, और खूंट पकड़ कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई।
क्या बात।
तो वो खूंट जो है वो है वर्तमान। तो जो वर्तमान में जीना जानता है उसे जीवन की समस्याएं ये पीस नहीं सकती। तो भूतकाल क्यों याद रहता है? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जीते, तो इसलिए भूतकाल में चले जाते हैं। हम हर क्षण अपने को खींच के लाए जो भी वर्तमान है, वर्तमान तो दिख रहा है ना, वर्तमान जी रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इसीलिए वर्तमान में जीना अगर सीखे, इसीलिए बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, प्रेजेंट में जिए। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी में जाते हैं, प्रेजेंट ले जाते हैं। तो लाइफ भी हमारा ये प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो एक हम बार 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 जब भी भूतकाल की तरफ जाए ना, प्रेजेंट में, वर्तमान में अपने को खींच के लाए कि लेट मी एन्जॉय द प्रेजेंट। क्योंकि आज अगर हम प्रेजेंट को एन्जॉय करेंगे, वही प्रेजेंट कल टुमारो पास्ट बन जाएगा।
ओके।
है ना, भूतकाल हो जाएगा। तो अगर मैंने प्रेजेंट ठीक कर लिया तो मेरा भूतकाल भी ठीक हो जाएगा, और जिसका भूतकाल और वर्तमान ठीक है उसका भविष्य की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक तो वर्तमान में रहना सीखें
जी,
ये आवश्यक है। तो भूतकाल को हम धीरे 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 ना फिर भूतकाल की तरफ जाएगा खींच करके लाएंगे तो एक आदत पड़ जाएगी वर्तमान में जीने की। नहीं तो कई इसमें आपने देखा होगा ना, अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, पुराने जमाने में एक हिजमास्टर वॉइस ग्रामाफोन रिकॉर्ड वगैरह हुआ करता था। रिकॉर्ड मतलब चला करता था, ऊपर साउंड बॉक्स सुई रखते थे तब रिकॉर्ड में आवाज आती थी। ऑफ कोर्स ओल्ड टाइमर्स ने तो देखा है कई बार वो रिकॉर्ड जब पुराना हो जाता था तो सुई फंस जाती थी तो बार बार वही आवाज आती थी।
अच्छा।
तो इरिटेशन जैसे होता है वैसे, बहुत अच्छा म्यूजिक होगा कुछ होगा लेकिन बार बार एक जगह अटक जाएगा तो इरिटेशन। तो आज यही हो गया, कई बार हम भूतकाल में जो अटक जाते हैं ना वो इस कारण से कि हम भूत से निकाल नहीं पाते।
Correct.
तो भूतकाल निगेटिव, प्रेजेंट वर्तमान, भविष्य। तो इसीलिए उससे निकालने के लिए एक तो ये आवश्यक है कि हम अपने को वर्तमान में जिए
जी,
जैसे हमारा जीवन ये गिफ्ट है
जी।
तो मैं तो एक समझता हूँ कि वर्तमान में जीना ये हर हालत में आवश्यक है। उससे क्या है जीवन में खुशी
जी।
है ना, हमारा मेंटल एटीट्यूड। मुझे एक बात याद आ रही है एक बच्ची की है माइंड में, एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची 5-6 साल की, स्कूल गई सुबह, तो जब स्कूल का टाइम हो गया लौटने का तो बड़ी बिजली कड़कने लगी, तो माँ को चिंता हुई कि अरे भाई बिजली और कैसे बच्ची आएगी। तो उसने दिखाया अपनी कार, ली कार में बच्ची को लेने गई तो देखा बच्ची पैदल आराम से चली आ रही है, बड़ी मुस्कुराती, और बिजली कड़कती है तो बस वो ऊपर थोड़ा देखती है, फिर अपना फ्रॉक व्रॉक ठीक करती है, मुस्कुरा के फिर आगे चल देती है। फिर बिजली कड़की, बार बार ये हो रहा था तो माँ ने पूछा उसे बाद में कार में बैठा के, तुम ये क्या कर रही थी? कि मम्मी गॉड वॉज टेकिंग माई पिक्चर सो आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ सो दैट आई कैन लुक प्रेटी। हाँ, लाइट होती थी, बच्ची का क्या कंसेप्शन यही है कि भाई
लाइट मींस कैमरा,
कैमरा कैमरे का वो। तो ये हमारा माइंड का एटीट्यूड है जो आपने बताया ना जैसे, तो किस प्रकार से हर हालत में चाहे नोइंगली हो अननोइंगली हो हम अपने को खुश रख सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जैसे आपने बताया अभी, जिस पर हम हैबिट, पुरानी हैबिट से निकाल करके हम पॉजिटिव हैबिट्स में जितने डेवलप करते रहेंगे उतना उतना हम खुश रहते रहेंगे। और जब हम खुश रहना जान जाएंगे ना, क्योंकि पुरानी हैबिट में जरूर वो दुखदाई है तभी हम उससे निकलना चाह रहे हैं।
करेक्ट,
हम उसी आदत से निकलना चाहते हैं जो दुखदाई है। जो अच्छी आदत है उससे तो निकलना नहीं चाहते, उसको तो और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो पुरानी दुखदाई आदत से निकलने के लिए आवश्यक है कि उसका जो एंटीडोट है उसकी तरफ हम थोड़ा सा करें तो पुरानी उस आदत से निकलते जाएंगे
जी। भाई जी, अब दूसरा एक हैबिट है जो शायद हम काफी लोग इसे फेस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो है एंगर।
एंगर, यस।
छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है और फिर हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी कोई भी चीज को समझ नहीं पाते। और फिर हम कई बार ये करते हैं कि बोल तो दिया लेकिन फिर बुरा भी लगता है कि क्यों बोला मैंने ऐसे। जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है तो फिर रियलाइजेशन होती है।
बिल्कुल सही बात।
तो इस गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए?
देखिए, गुस्सा के लिए कहा जाता है गुस्सा आवेग, आवेश से आता है और इसका अंत हमेशा पश्चाताप में होता है। जैसा आपने बोला ना, ये रियलाइजेशन होता है क्यों मैंने गुस्सा किया आदि आदि। तो गुस्सा एक तो यही, इस बात पे हम, इसके लिए भारतीय संस्कृति ने दो बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं। एक है जियो और जीने दो। होता क्या है, हम हर एक को दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा बोले ऐसा करे जैसा हम चाहते हैं, और वो अगर नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है।
Correct.
एक बड़ा सादी सी बात है।
Correct.
तो जियो और जीने दो का अगर सिद्धांत है, इस पर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा भाई, उसे भी जीने का उतना अधिकार है जितना मुझे है। तो इसीलिए इसके सिद्धांत पे अगर एक तो चलते चलें, एक्सपेक्टेशन हम कम से कम रखें।
करेक्ट।
दूसरी बात क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है
जी।
तो ये थ्योरेटिकली ऐसी बात लगती है कि इट मे बी डिफिकल्ट, लेकिन एक बड़े मोटे रूप से देखिए वसुधा ही हमारा परिवार है, इसको हमने इस रीति से ले लिया है मनुष्यों में, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आदि आदि, लेकिन वसुधा में तो सब चीज आती है। तो वसु पृथ्वी में पेड़ पौधे आ गए, प्रकृति आ गई, पशु पक्षी आ गए, जीव जंतु आ गए, तो वसुधैव कुटुंबकम का, क्योंकि वो ही हमें जिंदगी भर सुबह से रात तक वसुधा में ही सब चीज दिखती है।
करेक्ट।
तो ये इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ क्वाइट ईजी कि जो चीज़ देखती है उसे हम अपने मेंटल थॉट के आधार पर उसे अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकें। तो देखिए बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है ना, तो बस माँ की छाती से लगा रहता है। ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमेशा माँ की, धरती माता की छाती से लगे रहते हैं, वहीं से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो दे आर द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उनकी तरफ प्यार होना स्वाभाविक होना चाहिए। दूसरा, बच्चा जब चलना सीखता है तो दो हाथ दो पैर से चलता है, तो ये जो पशु हैं चौपाए हैं, दे आर द सेकंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली।
करेक्ट।
और वी आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो हमेशा जब ये रहेगा भाई आई एम द एल्डेस्ट वन, और ये जितने भी हैं व्यक्ति के अलावा भी, व्यक्ति तो ही हैं लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु इनकी तरफ अत्याचार और वो सब नहीं होंगे। आज वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है।
करेक्ट।
ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी क्यों है, क्योंकि पेड़ पौधों को हम काटते जा रहे हैं। तो इसको अगर वाइडर सेंस में और भी सोचेंगे इन, तो क्या होगा कि हमारा गुस्सा जो है ना, जो इस रूप में कई बार प्रकट होता है, लेकिन आपने जो बताया मनुष्यों के रूप में ही प्रकट जो होता है अधिकतर ना परिवार के अंदर, तो एक तो एक्सपेक्टेशन, दूसरी हमारी ये प्रवृत्ति कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तीसरा ये ईगो अहंकार। हाँ, तो इसके लिए बड़ा अच्छा बताते हैं भाई ईगो को हम कैसे छोटा करें। हम चाहते हैं ईगो से कम करना, तो ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई, देखिए अकेला लिखा जाता है, आई को लिखेंगे तो स्मॉल आई कभी नहीं लिख सकते, अकेले को कैपिटल ही लिखा जाता है, इतना बड़ा। इसमें स्पिरिचुअली ये बताते हैं जब हम ये समझते हैं उस आई को अगर छोटा करना हो क्या करेंगे, आई के ऊपर एक बिंदी रख देंगे, वो स्मॉल आई हो जाएगा कैपिटल आई के ऊपर ना। तो ऐसे ही ये शरीर भी देखिए आई की तरह है, खड़े हो जाइए सीधा हाथ यूं करके लगा के बॉडी से, आई जैसा हो जाता है
जी।
लेकिन उसके ऊपर हम बिंदी रख दें, जब हम ये समझेंगे मैं आत्मा हूँ, कॉन्शियसनेस यहाँ पर हूँ, उसके ऊपर शरीर का हाईएस्ट पार्ट तो यही है, तो मैं भी इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ। किसी को हस्बैंड का पार्ट है, किसी को वाइफ का, किसी को बच्चे का, कोई गरीब है कोई अमीर है, एवरीबडी इज प्लेइंग द पार्ट। तो जैसे उस फिल्म की शूटिंग में या ड्रामा में ये होता है, हीरो हीरोइन या सबको जो भी एक्टर होते हैं, हम ये पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी व्हेन दिस शूटिंग इज ओवर उसके बाद हम अपने कपड़े बदल करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तो पार्ट प्ले करते वक्त एक एटीट्यूड होता है, और लेकिन असली मालूम है कि पार्ट में भाई ये बैगर है, मैं राजा हूँ, लेकिन जानते हैं कि एक्चुअली ही इज नॉट बैगर, नाइदर आई एम किंग, हम ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो पार्ट प्ले करते हुए भी हम उसके वशीभूत नहीं होते, कपड़े बदल के अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे ही रियल लाइफ में भी हमारा जब ये एटीट्यूड रह जाएगा कि वास्तविकता में हम सब लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं, भाई इसको वाइफ का पार्ट है, इसको हस्बैंड का पार्ट है, इसको बच्चे का पार्ट है, तो फिर पार्ट होगा तो हमें फिर अंदर से गुस्सा नहीं आएगा, भाई एवरीबॉडी इज प्लेइंग द पार्ट।
करेक्ट।
तो एक ये एटीट्यूड बहुत मदद करता है गुस्से को जीतने के लिए। और बाकी इसके साथ साथ हम जब ये जानते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आज गुस्से के कारण ही ना ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है कि मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर क्लाउडी हो जाती है, राइट डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए एक ये हम एम रखें कि जब भी गुस्सा आए हीट ऑफ द मोमेंट में हम कोई लाइफ का मेजर डिसीजन ना लें। अक्सर करके देखा गया है कि कोई भी सोशल इविल्स होते हैं, सुसाइड्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, वो सब हीट ऑफ द मोमेंट में ही होते हैं।
Correct.
इसके अंदर बाकी छोटी बातें ये तो बताई जाती हैं, जब गुस्सा हो तो चलो भाई थोड़ा ठंडा पानी पी लो,
हैं,
तो उससे फिजिकली आपको थोड़ा सा कूलनेस आ जाएगी। उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, हैं भाई 100, 99, 98 हैं लाइक दैट, मतलब यू आर गेनिंग द टाइम। तो जब टाइम गेन कर रहे हैं तो उस स्टेट ऑफ माइंड से आप धीरे 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 बाहर आ रहे हैं। एक ये है, और एक ये भी बताते हैं भाई, उस वक़्त जाके शीशे के आगे खड़े हो जाओ, और शीशे के आगे खड़े होंगे और जब अपना रूप देखें, एवरीबडी फील्स कि भाई इज़ वेरी स्मार्ट, एक्टिव, ब्यूटीफुल, जब शीशे के आगे देखते हैं। लेकिन जब क्रोध के समय अपने को देखेंगे ना, अपने को खुद ही घृणा आएगी, अरे मेरा ऐसा रूप, मैं तो समझता था आई एम वेरी स्मार्ट एक्टिव, ऐसा रूप, तो अपने से ही घृणा आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब क्रोध आएगा ना तो फिर उसके उम्र नहीं होंगे। और एक ये भी कहते हैं कि भाई इसका एक पॉइंट यहाँ चिन्ह में ना प्रेशर पॉइंट होता है।
अच्छा।
हाँ, तो क्रोध आए और ये देखा तो आप यहाँ पर करके इसको प्रेशर पॉइंट को थोड़ा दबाएंगे तो धीरे 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 करके ना इसका एंटीडोट हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा और वो क्रोध को सबसाइड करेगा।
भाई जी, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो हमेशा लेट उठते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हमेशा काम को एंड मोमेंट पे करने की ही आदत होती है, क्योंकि जब तक वो प्रेशर ना आए ऊपर में तब तक उनसे वो काम होता ही नहीं है। तो ऐसे ये दोनों जो भले छोटी हैबिट्स हैं लेकिन ज़रूरी है, अगर इसे हम बदल सकें तो हमारी ज़िंदगी में और भी आसान हो सकती है।
देखिए आदत, हाँ, ये लेट उठने की नॉर्मल केस में तो स्वाभाविक है
जी।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में हमारे प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पर जब आते हैं और जब उन्हें बताया जाता है भाई कल सुबह आपको 4 बजे उठना है, हाँ, योग में आना है
जी।
तो पहली बार तो एकदम चौंक जाते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन जब हम लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर संभव है क्योंकि यहाँ पर आपको 10 बजे सो भी जाना है,
करेक्ट,
हाँ, तो जो सुबह उठने की आदत आपने बताई लेट तक सोने की, वो इस कारण से पूरे दिन की दिनचर्या
बिगड़ जाती
इस अदर से है कि अगर जो रात को सोएगा ही 12-1 बजे तो वो उठेगा भी मतलब 7 बजे 8 बजे जितने देर में
जी।
तो एक तो हमें अपनी ये रूटीन चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं।
हाँ जी।
और सुबह जल्दी उठना इसलिए ज़रूरी है, पुरानी तो एक कहावत है ये आपने सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और इसका मेडिकल भी वो है ग्राउंड। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं सुबह जब ये करते हैं ना तो उठ जाते हैं, कोई पढ़ाई पढ़िए या मेडिटेशन करें कुछ भी, तो उस वक़्त ब्रेन सेल्स जो है बहुत एक्टिवेट होते हैं और कोई भी चीज़ को ईजीली ग्रास्प कर लेते हैं। तो इसलिए हर एक कोई चाहता है कि भाई स्टूडेंट भी चाहता है मुझे याद रहे चीज़, तो ये बात जब बताई जाती है, लेकिन साथ साथ पहले 1-2 दिन उन्हें डिफ़िकल्टी होगी कि रात को सोने की लेट आदत है, 10 बजे बेड पर चले भी जाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन ना जब अगर 4 बजे उठ गए और उसके बाद ये देखा गया है थोड़ा नींद का सुस्ती का वातावरण रहेगा, लेकिन उसका कंपेंसेशन दिन में 1-2 घंटा सोने से हो जाता है। तो दिनचर्या के ऊपर एक तो बहुत डिपेंड करता है ये बात,
करेक्ट,
किसी भी रीति से हम आदमी को व्यक्ति को मिनिमम ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे नींद आवश्यक है,
करेक्ट।
तो वो 6 घंटे मतलब किसी भी रूप में 10 से 4 बजे तक हो सकता है सोने का, अगर 12-1 बजे सोएगा तो नेचुरली 7 बजे उठेगा,
करेक्ट।
तो एक तो ये उतनी नींद जरूरी है वो होना चाहिए
जी।
दूसरी बात उसके माइंड में ये भी क्लैरिटी रहे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं जल्दी उठने में, वो है। तीसरी बात जैसा व्यक्ति ना सोते वक़्त जो उसके लास्ट थॉट्स होते हैं वैसे ही अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, और मॉर्निंग में जो थॉट वो अपने को देता है वो ही थॉट फिर सारा दिन भर चलते हैं।
अच्छा।
इसीलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठे ना तो एकदम इमीडिएटली न्यूज़पेपर ना देखें, अपने को थोड़े से पॉजिटिव थॉट देंगे तो क्या होगा कि सारे दिन भर वो पॉजिटिव थॉट्स वगैरह रहेंगे तो आदमी का काफ़ी टाइम और एनर्जी निगेटिव थॉट्स में गुजर जाती है। सारे दिन भर उसने ये करा, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसी चीज़ों में क्यों, क्योंकि उसने सुबह जो थॉट्स दिए, न्यूज़पेपर देखा, टीवी वगैरह, और उसमें क्या है, निगेटिव, ये मर्डर हो गया, ये बात हो गई, ये सोशल इविल हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, ये इतने लोग मर गए। तो ब्रेन को सुबह से निगेटिवली फीड अगर हम कर देते हैं तो सारे दिन भर में हमारी एनर्जी, तो रात को बिस्तर पर हम चले भी जाते हैं तो भी हमें नींद नहीं आती, वो निगेटिव बातें घूमती रहती हैं। तो पहली बात ये आवश्यक है कि सुबह उठते ही हम बस न्यूज़पेपर वगैरह से अपने को दूर रखें, कुछ टाइम तक अपने को पॉजिटिव थॉट देखें। दिस इज़ द फूड फॉर द माइंड। और फूड जितना स्ट्रांग होगा, जैसे शरीर के लिए फूड जरूरी है, ऐसे ये माइंड के लिए जरूरी है। तो इससे ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में ही हमारी बायोलॉजिकल साइकिल ऐसी ठीक हो जाएगी कि सुबह लेट उठने की आदत ख़त्म हो जाएगी और नेचुरली 10 बजे के करीब नींद आने लगेगी और सुबह अपने रिक्वायरमेंट जो हम चाहते हैं उतने बजे। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी है कि रात को हम लोग संकल्प करके भी सोते हैं, सुबह फ्लाइट लेनी होती है कोई बात, भाई मेरे 3 बजे नींद खुल जाए, विदाउट अलार्म अपने आप ही शार्प 3 o'clock नींद खुल जाती है। तो आदमी के बायोलॉजिकल क्लॉक उसके कंट्रोल में आ जाती है। एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी वो काम करना चाहता है जो सहज है या जिसका उसे अभ्यास है
जी।
और जितने डिफिकल्ट काम है वो टालता रहता है,
कर लेंगे
बाद में कर लेंगे, और लास्ट मोमेंट जब करता है ना तो नेचुरली कहीं गलत होने की संभावना रहती है, उतनी सफलता नहीं रहती है। तो प्रतिदिन हम जब भी काम करने की लिस्ट बनाएं, सबसे पहले ये ज़रूरी है आज रात को कल के कामों का हम थोड़ा ब्यौरा बना लें, कल मुझे ये काम करने हैं, और प्रायोरिटी उसकी फिक्स कर लें। तो प्रायोरिटी अगर फिक्स हो जाती है तो अगर डिफ़िकल्ट काम होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस कितनी, एक है प्रायोरिटी, एक है कि किस समय वो कार्य हमें करना है। प्रायोरिटी के आधार पर पहले, दूसरा, तीसरा ये करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमें नेचुरली प्रायोरिटी हमारी उसके प्रति ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट है तो हमारी नेचुरल हैबिट हो जाती है, तो हम उसे ये करें जब हमारा माइंड फ्रेश है, उस समय हम कार्य करते रहेंगे तो लास्ट तक वो कार्य छूटने की संभावना नहीं रहेगी, पूरा हो जाएगा। तो एक लिस्ट बनानी ये बहुत ज़रूरी है अगले दिन कार्यों की। और उससे क्या होता है, जब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, काम हो जाता है ना, इतना मन के अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरली अगले दिन का जब कार्यों की लिस्ट बनाएंगे तो उस कार्य में सफलता स्वाभाविक मिलेगी और नेचुरली ये आदत ही खत्म हो जाएगी लास्ट मोमेंट पर कार्य छोड़ने की।
बिल्कुल,
तो एक लिस्ट बनाकर कार्य करना ये बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई जी। आज हमने इतने सारे हैबिट्स के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि लेट उठना या फिर गुस्सा करना या फिर कोई भी कार्य को एंड मोमेंट पे छोड़ देना, तो ये सब आदतों से कैसे बाहर निकले ये आज हमने जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, कोई भी कार्य जो अगर हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट आप चेंज भी कर सकते हैं। इस बात का नियंत्रण पाने के लिए आपको कम से कम 3 हफ्तों तक उस कार्य को करते रहना है, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी जो पुरानी हैबिट है वो नए हैबिट में रिप्लेस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।